نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو ہم انشاءاللہ تعالی علم لینے جا رہے ہیں قرآن پاک کا، اس کے الفاظ کا، معنی کا، تفسیر کا. تو کس نیت کے ساتھ آئے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ تو یہ کہ کیا ابھی تک اس کو اہم سمجھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کی جب تک قدر نہیں ہوگی نا، اس وقت تک بات بنے گی نہیں. آپ دیکھیں مقصد، تو آپ دیکھیں کہ ہم کس مقصد سے اس کو پڑھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اہمیت جاننا، اس کی قدر جاننا یہ ضروری. تو کیوں کورس کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے اوپر فخر جتانا ہے کہ میں نے بھی کورس کر لیا اور میرے پاس بھی اب سرٹیفکیٹ ہے، یا لوگوں کے منہ بند کرانے، تم نے تو آج تک قرآن ہی نہیں پڑھا، یا لوگ کوئی بات کریں مجلس میں تو ہمیں کوئی جواب تو دینا آئے. اگر اس طرح کے مقاصد ہیں تو یہ حدیث سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرے اس لیے کہ علم والوں کے ساتھ فخر کر سکے، یعنی کہ دوسرے علم والے بیٹھے ہوئے تو میں بھی کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جاؤں ان سے، کہ دیکھو میرے پاس بھی کتنا نالج ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں ہی بہت آتا ہے، مجھے بھی بہت آتا ہے. جو اس نیت سے علم حاصل کرے، یا جو جاہل لوگوں میں ان سے حجت بازی کرنے کے لیے کرے، کہ اس کے بعد یہ جن کو نہیں آتا نا، میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے کہوں گی، لو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا، تمہیں پتا ہے یہ تو اس طرح بات ہے، میں نے تو سیکھی ہے نا، مجھے پتا ہے نا، تمہیں کیا پتا. ان سے بحثیں کرنے شروع ہو جائے تاکہ میں اپنے آپ کو ذرا فخر کر سکوں نا، تو ذرا بار بار آرگیومنٹس میں پڑھتے ہیں، پھر ایسے ایسے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں جن سے بحثیں ہو سکیں، یا لوگوں کے چہروں کو پھیرنے کے لیے. یہ تیسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لوگوں کے چہروں کو کیسے پھیرا جاتا ہے؟ کہ آپ کسی مجلس میں گئے ہیں اور وہاں پہ ایسی دھواں دار تقریریں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تاکہ سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ سینٹر آف اٹریکشن بن جائیں، اٹینشن بن جائے، آپ لوگوں کی یعنی توجہ اپنی طرف کر لیں، اور لوگ کہیں کہ واہ واہ فلاں دیکھو نا، اس کے پاس کتنا نالج ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے میرے لیے. یہ تین مقاصد لکھ لیں. یہ حدیث میں تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان مقاصد سے علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. علم لے کے بھی اگر وہ یہ ان مقاصد کے لیے علم لے رہا ہے تو یہ ہے اس کا انجام. اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت عطا فرمائے. تو یہ سوچیں کہ آج میں کورس کیوں لے رہی ہوں، کیوں میں نے رجسٹر کرایا. جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو میری کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ آپ کا مقصد، جس مقصد سے آپ آئی ہیں، اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا اپنے گھر کا کام قربان کرنا، آپ کا وقت کی قربانی دینا، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا، یہ تو سب پھر ضائع ہو گیا نا. مقصد واضح ہونا چاہیے، گول واضح ہونا چاہیے. صرف یہ ایک ایکسرسائز ہی نہ ہو، ایم لیس چیز نہ ہو، پتہ ہونا چاہیے میں کیا حاصل کرنا چاہتی. خود کو سنوارنا چاہتی ہوں یا لوگوں میں بڑا بننا چاہتی ہوں، پاپولر ہونا چاہتی ہوں یا کوئی اور چیز چاہتی ہوں. اور پھر جو مقصد آج آپ لکھیں گی نا اپنی کاپی میں پہلے پیج پہ، کہ میرا مقصد یہ ہے، اس مقصد کو یا مقاصد کو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو دہراتی رہیں بار بار. اور جب کورس ختم ہو تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ واقعی یہ مقصد پورا ہوا ہے یا نہیں. اور اگر اس سفر کے دوران آپ کو کبھی لگے کہ میرا इनमें से कोई मकसद भी पूरा नहीं हो रहा। तो गौर करें कहाँ कमी रह रही है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। याद रखें, जो वक्त आप इसके साथ लगाएंगे ना, ये जिंदगी तो एक दफा मिली है, ये वक्त बड़ा कीमती है, इसको जाया नहीं करना कि चलो कोई बात नहीं 2-3 घंटे बैठना ही है ना, बैठ जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि वाकई एक मकसद को लेकर जहन में फिर बैठे, ए दिन सिरात अल मुस्तकीम को दोहराते रहे। ये रास्ता आसान नहीं है सिराते मुस्तकीम का, मगर बार बार दिल से दुआ करते रहे। याद रखें, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। वो दुनिया में चंद टके भी जमा करने के लिए भी इंसान को कमाई करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है, कुछ हाथ तो हिलाने पड़ते हैं। तो ये भी मेहनत वाला तो काम है, ऐसे नहीं है कि बस आपको हम जितना आसान कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहिए होगी, एफर्ट के बगैर नहीं हो सकता। फिर आपको हो सकता है कि जब आप इस क्लासेस को शुरू करें, कोर्स को शुरू करें, तो बहुत से लोग वर्गलाने की भी कोशिश करते हैं, जिन्होंने सूरह नास पढ़ी है इस क्लास में, वो जानते हैं कि शैतान इंसानों के थ्रू भी आके वसवास डालता है। कोई वसवसा डाल सकता है कि अब तुम कुरान सीखने जा रही हो, क्या इसका फायदा होगा, भला तुम्हें क्या नहीं आता, भला तुम्हें ये तो तुम्हें पता नहीं क्या बना देंगे, आजकल तो बड़ा खतरा है, फलाना है फलाना है। तो शैतान हर सूरत आपको बहकाने की कोशिश करेगा, रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। ये अभी से जान और पहचान लीजिएगा जब वो वसवसा डालेगा, या वो जब किसी के थ्रू आएगा। इसी तरह जिन्होंने कोर्स कर लिया है पहले एक दफा और दोबारा आए, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ये याद रखे, सूरह नास अभी उन्होंने पढ़ी है और उसकी प्लेसमेंट बड़ी खूबसूरत है कुरान करीम में, सबसे आखिर में सूरह नास है, कि अब जब तुम पूरे कुरान को मुकम्मल कर चुके हो, शैतान फिर भी वसवसा डालना नहीं छोड़ेगा। ये ना सोचो कि महफूज हो गए। अब क्या है, अब ये ना हो कि शैतान तुम्हें एक और तरफ से आके वार करें कि तुम तो बड़ी चीज बन गए, तुमने कुरान पूरा मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया, अब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है, अब तो तुम ग्रेजुएट हो गए, अब तो तुम बड़ी चीज बन गए। तो सुभान अल्लाह, शैतान के वसवास से महफूज रखने के लिए अपने आप को अल्लाह की पनाह में आना। जब किसी के दिल में भी वसवसा आए, या शैतान किसी दोस्त के या जानने वाले के थ्रू आए, तो इन सूरतों के जरिए अल्लाह की पनाह में आ जाइएगा। इसके लिए, इस इल्म को लेने के लिए सबसे पहले अपने अंदर इखलास पैदा करना, अपनी नीयत, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत को अल्लाह के लिए खालिस करना, और ये जरूर अपनी मकासिद में लिखिएगा कि अमल की कोशिश करनी और नियत करनी। जैसे जैसे इल्म आता जाए, वैसे वैसे अमल करने के लिए साथ साथ कोशिश करते रहें, जैसे जैसे आयतें पढ़ते रहें फौरन कोशिश करें कि उसके ऊपर अमल हो जाए, डिले ना करें। जितना डिले करेंगे उतना ही समझने शैतान को मौका मिल जाएगा, और ये सबर का रास्ता है। सिर्फ खुद ही सबर नहीं करना, व तवासव बिस सबर भी करना, जो आपके साथी हैं, जो क्लास में आपके साथी हैं, उनको भी सबर की तलकीन करना। और सबर किस चीज का, एक तो इल्म के लिए मैंने आपको वैसे ही बताया कि एक दिन में नहीं आ जाता, इस पे सबर। दूसरे, सबर किस बात के ऊपर कि ये जो रास्ता है ना, ये मुश्किल भी होगा, कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, तो सब्र से चलते रहना है, ये नहीं है कि अगले दिन छोड़ के भाग जाए। इस लिहाज से भी सब्र, सब्र चाहिए ना। सब्र किस नाम है, खुद को रोके रखना, सब्र का मतलब ये होता है। नहीं, अल्लाह की इताअत भैया, ये जो काम आपने शुरू किया इसके ऊपर खुद को रोक के रखना, जमा के रखना, ये सब्र के साथ आएगा। तो आप खुद भी करेंगे और अपने साथियों को भी, कोई साथी पीछे रह रहा हो, बेसब्रा हो गया, चला गया है, आप उसको वापस लेकर आए, उसको सब्र की तलकीन करें। फिर ये भी, इसमें भी सब्र चाहिए होगा कि कभी घर वाले नाराज हो सकते हैं, कभी रिश्तेदार बातें मना सकते हैं, और या कभी आपको कोई किसी की तरफ से कोई नागवार बात सुननी पड़ सकती है, कभी आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ सकती है, सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, रात को देर तक जागे रहना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी सब्र चाहिए। इमाम जौजी फरमाते हैं कि लज्जतों और राहतों को कुर्बान किए बगैर इल्म हासिल नहीं हो सकता। सुना है आपने, लज्जतें और राहतें कुर्बान किए बगैर इल्म नहीं आ सकता। कभी आप शायद दो डिशेज आप बनाती हो और डिजर्ट भी बनाती हो, हो सकता है आपको एक खाना बनाना पड़े, हो सकता है किचन में आपका टाइम अब कम आपको स्पेंड आपका होने लगे, पहले बहुत एहतमाम से टेबल सजाती थी, अब उतना एहतमाम ना हो सके, लेकिन आपको हरीस खाने पीने का नहीं होना, इल्म का हरीस बनना। इमाम जौजी फरमाते हैं, जिन्होंने ये फरमाया ना लज्जतों राहतों को कुर्बान किए बगैर इल्म नहीं आ सकता, तो उनकी एक फेवरेट डिश होती थी हरीसा, आज भी आपको पता होगा हरीसा, तो बहुत अरसे तक हरीसा नहीं खा सके। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त हरीसा बाजार में बिकता था उस वक्त कहते हैं कि मेरी इल्म की क्लास होती, या तो हरीसा खाता या इल्म लेता, उन्होंने इल्म लेना प्रेफर किया। तो सब्र के साथ चलते रहेंगे, इन कोई कुर्बानी देनी भी पड़े तो खुश उसलूबी से, दिल को तंग करके नहीं, हाय हाय करके, और छोटी सी कुर्बानी भी दी तो उसके ऊपर भी इतना ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या पहाड़ ढोने को इनको कह दिया, ऐसे नहीं, खुशी के साथ कि आपने इस इल्म की फजीलत सुनी है ना, खुशी के साथ इंशाल्लाह इसके लिए कुर्बानी दो। तो ये इमाम जौजी जो है ये अपने साथ सूखी रोटी रखते थे, क्योंकि कहते हैं कि अगर मैं अपने पसंदीदा नाश्ते को करने के लिए बैठता तो इल्म की क्लास आधी गुजर जाती। तो आप मसलन आप सुबह को बैठे हैं, फ्राइडे है, अब आप अगर लंबे चौड़े नाश्ते करने बैठ जाएंगे तो ज़ाहिर है देर से आएंगे। क्या है, उतना ही अपने लिए खाने पीने का भी रखें कि जिसके अंदर आपके इल्म में हरज ना हो लेने में, क्लास के टाइमिंग्स की पाबंदी करें। ये सिर्फ क्लास के लिए नहीं बल्कि अपनी आपकी सारी ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि चाहे ग्रुप एक्टिविटी हो, चाहे क्लास हो, चाहे आपने खुद अपना सबक याद करना हो, तो आपकी जब ज़िंदगी में एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे होंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला सारे ही काम आपके टाइम पे होंगे। तो क्लास में रेगुलर हो, वक्त की पाबंदी भी करें और इसको मामूली ना लें, अभी मेहमान आ गया तो छोड़ो क्लास को, अभी फलां का फोन आ गया तो छोड़ो क्लास को। याद रखिए जब आप क्लास के लिए बैठें, तमाम फोन तमाम डिस्ट्रैक्शंस इनसे आज़ाद होकर बैठें, कोई फोन आपने क्लास के दौरान नहीं लेना, किसी को टेक्स्ट आपने क्लास के दौरान नहीं करना, इवन यहाँ पे ये पैल टॉक पे अगर आप बैठे हैं मैसेजिंग आपस में एक दूसरे को करनी, ये नहीं करनी, ये इल्म की मजलिस है, इसका वकार होता है, इसकी इज्जत होती है, इल्म की मजलिस की का एहतराम करें। ऐसे लोगों को इल्म नहीं मिलता जो ना कदरे होते हैं, इसकी कदर करें, आपको बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो रही है और आप मशगूल हैं कहीं और, आपको ये बात करनी ज़्यादा अहम है कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड, ये बातचीत करनी ज़्यादा आपके लिए अहम है। और जो इल्म का एक मसला आपसे गुजर गया, आप जाहिर है उस्ताद ने तो बता दिया जो बताना था, अब वो आपका स्किप हो गया, वो स्किप हुए तो हुए, अब मैं उससे हाल है वाल, वो वालेकुम असलाम कर रही है, ठीक ठाक हूँ, मैंने फलानी पार्टी पे जाना है, अच्छा फिर तुम क्या कितने बजे जाओगी, कितने बजे आओगी, किसके साथ जा रही हो, मुझे भी ले लेना, अब ये तो आपकी बातचीत आगे से आगे शुरू हुई, उसको भी आपने डिस्टर्ब किया, खुद भी आप अपने इल्म का हरज आपने किया, और आपने अपनी यानी एक माहौल को भी जो आपका एक जहन इस तरफ लगा हुआ था, अब जहन डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपको पता है साइंस अब बताती है कि आप अगर एक इल्मी उसमें मशगूल है किसी जिक्र में, किसी मुजाकरे में, किसी इल्म के मसले मसाइल में, कोई सीखने सिखाने में आप मशगूल हैं, और आपका जहन अगर डिस्ट्रैक्ट होता है, मसलन कोई फोन कॉल आ गई है या कुछ है, तो उसके बाद अपने आप को वापस इसमें लाने के लिए ब्रेन के लिए 15 मिनट्स चाहिए, 15 मिनट्स चाहिए ब्रेन को वापस फोकस करने के लिए उस पर जिसमें आप पहले थे। इसलिए जब मैं पढ़ रही होती हूँ और मैं कोई काम इल्म का कर रही होती हूँ तो मैं फोन कॉल्स नहीं लेती, इसलिए कि वो मुझे कोई और मसले मसाइल की बात होगी, फिर जब मैं दोबारा उसी चीज़ को पढ़ने लगूंगी तो मुझे बहुत देर लगेगी दोबारा फोकस करने, क्योंकि आपका दिमाग भटक गया ना, कहीं और चला गया, अब आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगे, डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो तमाम चीज़ों को बाद में रखें, जब आप इसको अहमियत देंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला दूसरे भी इसको अहमियत देंगे। जिस दिन आपने इसको गैर अहम किया, कोई बात नहीं, क्लास ही है, मैं बाद में कर लूंगी, चलो आज तुम्हारे साथ मैं शॉपिंग पे चलती हूँ, अच्छा वहाँ सेल लगी हुई, कोई बात नहीं, क्लास है वो तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाती है, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। अगर आपने इस तरह का रवैया अख्तियार किया, कोई आपकी इस आपके पढ़ने को भी नहीं अहमियत देगा और आप खुद भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसलिए आप खुद पहले इसको अहम समझें। आप किसी का फोन छोड़ देंगे लाजमी तौर पे, कोई कहीं कहीं नहीं भागा जाता, किसी को आपसे बात करनी होगी दोबारा कॉल कर लेगा, कोई करोड़ों का सौदा आपका आपका नुकसान नहीं होगा, ये करोड़ों का सौदे का नुकसान हो रहा हो, हम कितने फिक्रमंद होंगे। क्लास में एक मसला मसाइल या एक आयत गुजर गई, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है कि देखो एक गुजर गई आयत, या मैं छुट्टियों पर चली गई थी, मैंने इतने दो रकूआत की मैंने तफसीर छोड़ दी थी, मैंने मिस कर दी थी, उसकी कोई आपको फिक्र ना हो, तो फिर ये तो कितनी, इसका मतलब तो ये कि आपको इसकी अहमियत समझ नहीं। तो आप उसकी जब कॉल को मिस कर देंगे, वो दोबारा आपको कॉल करेंगे तो पूछेंगे आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, आप उनको बताएंगे कि फ्राइडे इसको मैं तफसीर की क्लास लेती हूँ। एक तो आपने पैगाम उस तक पहुँचा दिया, ठीक है, पैगाम पहुँचा दिया कि ऐसे है, हो सकता है अल्लाह उसके दिल के अंदर डाल दे, वो आपसे पूछ ले कि कहाँ लेती हो, कैसे लेती हो। अच्छा दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट टाइम वो इस टाइम पे फोन नहीं करेगा, उसको पता है कि इस टाइम पे फोन करूँ तो ये फोन नहीं उठाते, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे के लिए बच गए, वरना हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई तो फोन कर ही लेगा। तो इसलिए इसको आप नंबर वन प्रायोरिटी देंगे तो दूसरे भी नंबर वन प्रायोरिटी देंगे, घर वाले भी फिर नंबर वन प्रायोरिटी देंगे, आपके बच्चों को भी पता चल जाएगा, आपके शौहर को भी पता चल जाएगा, आपके दोस्त अहबाब को भी पता चल जाएगा कि भाई ये इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे और कोई चीज हो लेकिन क्लास के मामले में ये बहुत फर्म है। तो फिर वो भी आपको देखें तो इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो भी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको पता होगा ये सीरियस है इस मामले में, और आप खुद ही सीरियस नहीं है, आप खुद ही नॉन सीरियस है, तो सारे ही नॉन सीरियस नहीं है, भाई क्या है तुम बाद में कर लेना ना, क्योंकि आपने पिछली दफा उनको कहा था मैं बाद में कर लूंगी, तो अब आपको वो खुद ही कहेंगे बाद में कर लेना ना तुम। तो इस चीज में एहतियात करनी है। दूसरी, अपनी तहारत का जरूर ख्याल रखिएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की तरफ आ रहे हैं, जो कुरान की मजलिस होती है ना वहाँ फरिश्ते हाजिर होते हैं, गंदे लोगों के साथ गंदी जगहों पे शैतान होते हैं, ठीक है ना, तो आपके जिस्म भी पाक साफ हो, आपकी जगह भी पाक साफ हो। अगर आपने सॉक्स पहनी हुई है तो वो चेंज करें, अगर आपने और आपके अंडर गारमेंट्स हैं उनको चेंज करें, ये नहीं है कि एक ही पसीने के अंदर या इसके अंदर। अव्वल तो जुमे के दिन क्लास होती है, जो लाइव क्लास लेने वाले गुसल करके क्लास के लिए बैठे प्लीज, सबको मैं कहती हूँ, भले आपको थोड़ा पहले उठना पड़ेगा, ये नहीं बिस्तर के अंदर ही फोन डायल कर रहे हैं, फोन लगा के तो बैठ जाऊँ कोई बात नहीं, उसके बाद फोन छोड़ के फिर बाथरूम चले गए, वो पीछे अटेंडेंस हो रही है सर, आपको अटेंडेंस के टाइम पे यहाँ पे गुसल करके कपड़े चेंज करके खुशबू लगानी है, लगाएं, आप घर में ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू लगा के आप बैठिए। फिर चूंकि हमारी क्लास जुमे को होती है इसलिए आप लोगों के लिए खास इंस्ट्रक्शन, जुमे के दिन कुछ लोगों के हस्बैंड जुमे के लिए घर आते हैं और घर से तैयार होके जाते हैं, उनके लिए पहले से अगर उन्होंने कोई कपड़े पहनने हैं या उन्होंने कुछ खाना है पहले से उनके लिए इंतजाम करके फिर आप उनको बताएंगे कि मेरी क्लास होगी और इस टाइम से इस टाइम तक होगी, इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बच्चों को भी बताएं, सबको बताएं मैं क्लास में हूँ। उन अब आपको ये फिक्र ना हो कि हाय अभी मुझे उठ के जाना है, ओहो कितना टाइम हो गया, मुझे तो ये अभी बनाना है, मुझे तो अभी कपड़े इस्त्री करने, मुझे तो अभी उनके लिए ये चीज़ बनानी, नहीं। फिर आप उससे केयर फ्री हो तो एक दिन पहले से इसके इंतजाम शुरू कर दें। एक दिन पहले अगर उन्होंने कुछ खाना है तो उसका इंतजाम करें सुबह ही। कोशिश करें अगर आपके इतने सारे काम है ना, आप फजर के बाद सोए नहीं, कोई नहीं है, आप इल्म के रास्ते पर आए ना, मैंने क्या बताया, लज्जत तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, नींद को भी कभी कुर्बान करना पड़ेगा। अगर जुम्मे के दिन कोई बात नहीं, थोड़ा कम सो गए या दोपहर को आप नैप ले लीजिएगा, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये आपको क्या दर्जे दिलाएगी इसका अंदाजा आज आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इसमें इस रास्ते में कुर्बानी देंगे और इस इल्म को ले लेंगे, इंशाल्लाह वो मकामात पाएंगे कि अगर उनका मकाम आखरत में बाकी लोग देख लेना, आज देख ले, तो सारे काम छोड़ के इसी काम में लग जाए। अच्छा फिर अब आपके ग्रुप इंचार्जेस भी होंगी, आपके और हमारे एडमिन्स भी होंगे, तो कोशिश करें कि आपके ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, दूसरों को इंतज़ार ना करवाएं, दूसरों को बार बार कॉल ना करवाएं, दूसरों को इतना तंग ना करें कि वो आपके पीछे भागते हैं। ऐसे ही समझें कि जहाँ आप अपने घर के मामला और सब कुछ समेट के या फिर आई हैं, उनके भी घर के मामला, तो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोगों का मिजाज एक जैसा नहीं होता, हो सकता है आपका अपने ग्रुप इंचार्ज से मिजाज ना मिलता हो, या साथी लोगों से ना मिलता हो, या किसी एडमिन से ना मिलता हो, लेकिन ये भी आपके लिए सीखने के लिए एक तजर्बा होगा। क्योंकि दुनिया में जब इंसान निकलता है ना, तो हर एक आपको अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं मिलता। यहाँ से आप ये भी सीखेंगे कि पर्सन पब्लिक रिलेशनिंग कैसे होती है, लोगों के साथ बात करना क्या होता है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से मामला करना क्या होता है, ये आपकी ट्रेनिंग है। कुरान पढ़ के जब आप निकलेंगे, आपको हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा, हर तरह के लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। आपको अल्लाह ताला सिखाने वाला बनाए, या आप सिखाने वाले होंगे तो उसमें भी बहुत नापसंदीदा बातें लोगों की आपके सामने आया करेंगी। तो अगर आप जरा सी किसी की बात सुन के फौरन भाग जाते हैं, जरा सी बात आपके मिजाज पे इतनी ग्रां गुजरती, हाँ उसने ये क्यों कह दिया, मैं तो बस सब छोड़ रही हूँ, अब मुझसे नहीं होता, अब ये मेरे से ज्यादा, तो फिर आप तो कम हिम्मत कम हौसला बन गए। इस रास्ते में तो पैगंबरों ने बहुत बहुत तकलीफें उठाई। मुझे आपको कोई कोई एक बात कह देता है तो क्या हमारी शान में ऐसी गुस्ताखी हो जाती है कि हम कहते हैं अब हमने करना ही नहीं कहा, ठीक है फिर मैं नहीं करती, नाराज होकर बैठ गए। लो आपको ग्रुप इंचार्ज ने कुछ कह दिया, आप नाराज हो गए, या टीचर ने कोई ऐसी बात बोली, अव्वल तो मैं कभी कहती नहीं, इंटेंशनली मैंने कभी नहीं कहा, अगर कभी, मुझे नहीं पता इंसान हूँ, कभी कोई मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो किसी के मिजाज पे गरां गुजरे, या किसी को उससे तकलीफ पहुंची हो, तो उसको ये ना सोचिएगा कि ये पता नहीं मुझे ऐसे क्यों कहा इन्होंने, और अब मैंने नहीं क्लास लेनी, और अब मुझे नहीं है, नहीं, आप किसके लिए ये सीख रहे हैं, ना किसी का भी मेरे ऊपर कोई एहसान है, जो मेरा अजर है वो अल्लाह ने मुझे देना, अगर उसने कबूल कर लिया और मैं उसी से मांगती, आप में से किसी से भी नहीं मांगती, तो इसलिए किसी का भी मेरे ऊपर एहसान नहीं है कि वो क्लास में आ रहा है और सीख रहा है। ठीक है, तो आप मेरे लिए नहीं सीख रहे, ना आप किसी एडमिन के लिए सीख रहे हैं, ना किसी ग्रुप इंचार्ज के ऊपर आपका कोई एहसान है कि आप सीख रहे हैं। आप किसके लिए सीख रहे हैं, आप अपने मकासद में देखें। अब आपको ये आपके मकासद अगर पूरे हो रहे हैं, तो आपको चाहे कोई भी उस्ताद मिले, आज मैं हूँ कल को हो सकता है मैं दुनिया में ही ना हूँ, ये पता नहीं कोर्स खत्म होता भी है या नहीं, कोई और टीचर आ जाए, आपकी तालीम का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। टीचर आए और जाए, चाहे ग्रुप इंचार्ज आए या जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी रफ्तार नहीं कम होनी चाहिए। हम इन लोगों के लिए पढ़ रहे हैं क्या, इनके लिए पढ़ते हैं आप? अगर तो कोई कह रहा है मैं ग्रुप इंचार्ज के लिए पढ़ती हूँ, ये होगी तो मैं पढ़ूंगी और ये ना हुई तो मैं नहीं पढ़ूंगी, अगर किसी का ये ख्याल है ना, हो सकता है उसको वो ग्रुप इंचार्ज मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर कोई इस वजह से पढ़ रहा है ना, तो वो आज ही प्लीज चला जाए, आज ही चले जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको जब पहले दिन ग्रुप इंचार्जेस दिए गए थे, जो लोग पुराने हैं उनको मैं कह रही हूँ, तो क्या आप उनको जानती थी उस वक्त? इसी कुरान ने आपको इतने प्यारे साथी दिए, ग्रुप इंचार्ज भी थे। यही कुरान आपको और साथी देगा, और ज्यादा बेहतर, हो सकता है इनसे भी ज्यादा अच्छे, या और प्यारे प्यारे साथी। आपका हल्का अहबाब और बढ़ गया, और अच्छे अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान और मुलाकात हुई, और ज्यादा मोहब्बत करने वाले आपको रिश्ते मिलकर। तो इंसान इन रिश्तों को बढ़ाता है कि कहता है कि नहीं बस मैं इन्हीं के साथ जुड़ी नहीं हूँ। आप कुरान के साथ तो जुड़े नहीं, आप तो ग्रुप इंचार्ज के साथ जुड़ गए। मैंने किस दिन आपको ये सबक दिया कि मेरे साथ जुड़ो या किसी ग्रुप इंचार्ज के साथ जुड़ो? किस दिन मैंने आपको ये सबक सिखाया? क्या आपको हमेशा ये नहीं सिखाया कि कुरान के साथ जुड़ो? अगर कोई मेरी जात के साथ भी जोड़ा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो फानी हूं, मेरा तो खत्म हो जाना, ये इल्म बाकी रहेगा। और आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे तो आप औरों से सीखते रहें, आगे अपने इल्म को बढ़ाएं, कई उस्तादों से सीखें। तो अपना फोकस इंसानों को ना बनाएं, इनको मकसद ना बनाएं, ये मेरे आपके जैसे इंसान है तो ये आज है कल नहीं है। पता नहीं कल को किसी की सेहत इजाजत दे ना दे, जिंदगी इजाजत दे ना दे, हालात इजाजत दे ना दे, तो आप तो रुक जाएंगे। तो यहीं पे खोट आ गया नियतों का, ये हम तो इसके लिए करते हैं। बहुत ही मुझे दुख हुआ बाज लोगों की ये बात सुन के, कुछ लोग सिर्फ इसलिए रजिस्टर नहीं करा रहे, उनको ये डर है पता नहीं हमें ग्रुप इंचार्ज वो वाली मिले कि नहीं। ये कैसी बात है, अब ग्रुप इंचार्ज इसके लिए पढ़ते हो आप? तो ठीक है, फिर वो घर पे ही रहें, क्योंकि वो उनको तो ग्रुप इंचार्ज वो मिलेगी नहीं, वो बैठे रहें। क्योंकि अगर वो इस ग्रुप इंचार्ज के लिए आते थे ना, तो फिर जाहिर है फिर ऐसे इल्म लेने का तो कोई फायदा नहीं। और जो इस नियत के साथ जिन्होंने रजिस्टर कराया कि वो मिलेगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊंगी, वो भी वापस चले जाए, हमें बता दें कि हमने नहीं आना। क्योंकि ये इंसानों से जुड़ने का प्रोग्राम नहीं है। मैं यहाँ पे ये अपना वक्त इसलिए नहीं लगा रही कि आप सारे मेरे से या किसी ग्रुप इंचार्ज से जुड़े, वो भी आपकी तरह के स्टूडेंट्स ही हैं, वो आपसे सीनियर स्टूडेंट है, वो आपको हेल्प कर रही है, बस ये बात। मैं भी सीखने वाली हूँ, मैं भी तालिबे इल्म हूँ इस कुरान की, कोई आलिम नहीं बन गया इस कुरान का, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, कोई अपने आप को आलिमा नहीं कहला सकता, ना मैं ना कोई और। ओके, अल्लाह ताला ने बता दिया हर आलिम के ऊपर आलिम है, बड़ी बेवकूफ़ी है खुद को आलिमा कहलाना। तो ना मेरे साथ जुड़े, ना मैं कोई मुकम्मल हूँ, मैं भी इस कुरान की सीखने वाली हूँ। अब आपके साथ मैं दोबारा सीखूंगी इंशाअल्लाह ताला, तो मैं भी सीखने वाली हूँ। ना आप मेरे से जुड़ेंगे, ना किसी और से जुड़ेंगे, आप जुड़ेंगे अल्लाह की ज़ात से, इस कुरान के ज़रिए, ये अल्लाह की रस्सी है। हमारा एम ये है कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए जब मैं इस रस्सी को थाम लूँ, इसको हबलुल्लाह कहा गया। और एक सहाबी से जब पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो फरमाया ये कुरान है, इसका एक सिरा अल्लाह के पास है और एक सिरा इंसान के हाथ में है। तो मैं आपको ये रस्सी पकड़ा रही हूँ कि इसको थामे, इसको मजबूत पकड़े, इससे मजबूत ताल्लुक करें, ना कि इंसानों के साथ। ठीक है, ये हमारे प्यारे रिश्ते हमें इसलिए प्यारे हैं, इसलिए प्यारे हैं कि ये भी हमारे कुरान के साथ हैं, ये भी हमें बहुत अजीज है। लेकिन वो सिर्फ ये चार छः लोग, आठ दस लोग जो आपके ग्रुप में, वो ही नहीं है, उनके बाहर भी हैं, सारी क्लास ही है माशाल्लाह, सभी कुरान वाले निकल के तो देखें, वो भी कैसे प्यारे प्यारे साथी। तो किसी को ग्रुप इंचार्ज मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, ये हमारा कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को एक तो जहन में रखिएगा। तो ये चीज़ें आप शुरू से अपने जो आप नोट्स बना रही हैं, जो कर रही हैं, उसमें शुरू से ये बातें लिख लें, अपने मकासिद और तीन अल्फाज, सबर सबर सबर। अब इसमें भी तो सबर ही चाहिए, जो कह रहे हैं कुरान पढ़ लिया हमने, फिर भी अगर उनके अंदर बेसब्री और ये सबर नहीं है कि हम किसी के साथ भी चल सकते हैं, कुरान ने हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है कि हम आप लोगों के साथ ताल्लुकात में हमने तो हर एक के साथ ही भलाई के साथ चलना है, और ये भी मेरा एक टेस्ट है। तो अगर उनको अभी तक उन्होंने यही नहीं सीखा कुरान पढ़ के पहले भी, तो क्या सीखा है? फिर सब्र नहीं आया। तो हर बात में सब्र, जो नए आने वाले हैं वो भी सब्र, और जो पुराने वो भी सब्र। देखिए एक पौधा आप लगाए ना तो एक दिन में उग जाता है क्या? कितना टाइम लगता है ना एक दरख्त बनने में, उसको कितना टाइम लगता है। अगर हम बेसब्री करें और उसी दिन उखाड़ के फेंक देंगे, ये तो कोई इतना टाइम लग रहा है, इसका कोई फायदा नहीं, तो अपना नुकसान किया ना। तो ये भी एक बीज हम डाल रहे हैं, इसके अंदर सब्र के साथ हम चलते रहेंगे, सारा कुरान का सफर करेंगे, तो तब एक तनावर दरख्त बनेगा आखिर में इंशाल्लाह। लेकिन इसकी निगहदाश्त करनी होगी, इसको पानी देना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी, इसके साथ टाइम लगाना होगा, तो फिर ये बढ़ेगा। अगर छोड़ के बैठ जाएंगे तो सूख जाएगा, ठीक है? छोड़ के नहीं बैठना, मेहनत करनी है इसके साथ। किसान कितनी मेहनत करता है बीज लगा के, तो हमें भी मेहनत करनी होगी, मेहनत के लिए तैयार। और जब भी आप क्लास के लिए आए, आपको नाश्ता वास्ता सही करके आए, ताकि फिर भूख ना लगे, कि बीच में आप भूख लग रही तो आप स्नैक्स के लिए उठ रहे हैं। बीच में घर के कामों का ना सोचें कि वो फलाना काम रह गया और फलाना अभी काम होना है और बर्तन अभी धुलने के लिए पड़े हुए हैं और ये है। फिर जहाँ पे भी आपकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा शोर वोर हो, कहीं टीवी लगा हुआ है या कोई कुछ है, उस जगह पे ना बैठें प्लीज। जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन, उस जगह से दूर बैठिए। और जो मिस हो जाए आपसे, उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हाँ ये मिस हो गया, इंशाल्लाह ताला वो पूरा हो जाएगा। आप ग्रुप्स इसीलिए, आप उसमें आपको हेल्प करेंगे आपके ग्रुप में चार। तो शुरू शुरू में चूँकि आप लोगों को इतनी आदत नहीं होती बैठने की, हमारा सबक भी छोटा होगा, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने इस चीज़ की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं कि मैंने बैठना, खुद को कंट्रोल करें, उठ उठ के बार बार ना जाएं। जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आपका पारा लफ्जी तर्जुमे का, अगर आपने लिखने वाले पारे नहीं लेने तो लफ्जी तर्जुमे वाला आपके पास होना चाहिए। और अगर आप वो इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने लिखा है कि हमें वो कुरान चाहिए जिसमें हम लिखें भी, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको मेल करेंगे। हमारे पारे जो भी हम तक पहुँच जाते हैं तो ये मेलिंग का काम शुरू हो जाएगा। आपके शहर में आपकी जगह में एक हम स्टेशन बना देंगे जो मेन स्टेशन होगा, आप वहाँ से जाके पिकअप कर सकते हैं अपना पारा। जो न्यू जर्सी में यहाँ करीब करीब के लोग हैं उनको खुद आके पिक करना होगा, या एक बंदा बाकी लोगों के लिए पिक कर ले इंशाल्लाह ताला। तो आपके पारे रेडी होने चाहिए नेक्स्ट फ्राइडे को। आपके लिए आप फोल्डर खरीदें, आजकल चूँकि बच्चों के स्कूल का सीज़न है भी वैसे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े वो बाइंडर्स टाइप मिल रहे हैं, जिनके अंदर रिंग बाइंडर जैसे होते हैं वो मिल रहे हैं, और लूज लीफ पेपर्स मिल रहे हैं। तो लूज लीफ पेपर्स के अच्छे खासे 2-3 पैक्स ले लें आप, ताकि आपको एकदम से फिर ख़त्म नहीं हो जाए, और आपके पास रिंग बाइंडर हो अच्छा बड़ा, और बीच में वो डिवाइडर्स मिलते हैं, ठीक है? डिवाइडर्स भी खरीदें, और क्या उनको कहते हैं, उसके ऊपर लिख भी सकते हैं कि जो डिवाइडर होता है जिसमें बाहर थोड़ा सा एक नोक निकली होती है, उसके ऊपर आप लिखेंगे पारा वन, ताकि आप जब भी अपने फोल्डर को देखें आपको पता हो कि ये पारा वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब पारा टू का आएगा तो वो आप टैब वहाँ पे लगा देंगे पारा टू का। हाँ जी, टैब्स होते हैं, तो वो पारा टू का बीच में वो भी डिवाइडर्स भी आप खरीद लीजिएगा, वो डिवाइडर भी काम आएंगे आपको। पूरा पेज होता है डिवाइडर का, उसके साथ ही टैब भी लगा होता है अक्सर। इसी तरह बाहर आप अच्छे से स्टिकर या मार्कर से लिखेंगे कि पारा वन टू, और आगे अब वन से लेके आगे डैश लगाएं और आगे कुछ ना लिखें। जितने पारे आप तफसीर इस आप अपने फोल्डर में लिखेंगे वो इंशाल्लाह जब जहाँ तक आप लिखेंगे वो फिर आप बाद में पारा लिख लीजिएगा, मगर पारा का नंबर वन से लेके आगे तक, ताकि आपके ये फोल्डर जब पढ़े हों आपको पता हो कि किस फोल्डर में कौन सी तफसीर है। अगर आप कुरान पाक में लिख रही हैं जो हम इंशाल्लाह आपके लिए मंगवा रहे हैं, उसमें आपके लिए खाली पेपर है, पेज है जिसमें आप तफसीर लिख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आप तफसीर लिखना चाहें तो फिर भी आपके पास ऐसा फोल्डर मौजूद होना चाहिए। मैं आपको इंशाल्लाह सबसे पहले रूट वर्ड्स और वर्ड एनालिसिस कराऊंगी, हर हर लफ्ज़ का तर्जमा बताऊंगी, हर हर लफ्ज़ को ब्रेक करके बताऊंगी। तो उसके लिए आप अगर सिर्फ फोल्डर इस्तेमाल करें, यानी जिन्होंने हमारे वाले पारे नहीं लिए जो हमारे आ रहे हैं इंशाल्लाह कलमी कुरान, वो कलमी पारे जो हमारे आ रहे हैं, अगर वो नहीं लेते तो आपके फोल्डर में सबसे पहले फिर पहले लिखा होना चाहिए वर्ड एनालिसिस, आयत का नंबर, उसके आगे फिर आप अल्फाज और उस आयत में जो अल्फाज आए हैं वो लिखेंगे, और उनके आगे फिर रूट्स। उसके बाद फिर तफसीर का शुरू होगा, तफसीर आयत नंबर 1 से लेके मिसाल के तौर पे 5 तक, तो वो लिखा होना चाहिए हेडिंग। डेट ज़रूर लिखी होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह करके आप अपनी ये शुरू करेंगे। कोशिश करें कि आप फोल्डर के बाहर ही बिस्मिल्लाह का स्टिकर लगा दें ताकि आपको याद आ जाए। इसी तरह पहली क्लास से पहले सब लोग 2 नफल नमाज हाजत के पढ़ के आएँ, अल्लाह ताला से दुआ करके आएँ कि जो हम सफ़र शुरू करने लगे अल्लाह ताला इसमें हमें साबित कदमी अता कर। साबित कदमी बहुत ज़रूरी है, कोई काम भी आप करें अगर उसमें साबित कदमी नहीं है, जमाव नहीं है, कभी आए कभी चले गए, कभी मूड हुआ तो ले ली, कभी मूड हुआ तो नहीं ली, तो वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। याद रखिए वो पूरा कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा ना, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए अच्छा, फिर ये नहीं कि सिर्फ लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि बोल कर रहे हैं, आपकी सुनने सुनना भी आपने फोकस के साथ है, ठीक है, फोकस से सुने। और फिर जरूरी नहीं आप सारी बातें लिखें, क्योंकि शुरू में अभी आपकी स्पीड भी इतनी नहीं होगी, सारी बातें लिखनी जरूरी नहीं है, बल्कि आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। और इसके लिए आपकी इतनी देर बैठने के लिए और फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड भी फ्रेश हो, आपका जिस्म भी फ्रेश हो, आपकी जगह भी साफ़ सुथरी हो, आपकी हर चीज़ एवरीथिंग क्लीन, आपकी टेबल पे कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें ना पड़ी हो कि गिरती पड़ रही हैं चीज़ें, टेबल हो चेयर हो, बिस्तरों के अंदर घुस घुस के प्लीज़ किसी ने क्लास नहीं लेनी। मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, लिसनर्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो जो भी करें आप, उनके साथ हमारी कोई कमिटमेंट है सच है नहीं, तो लेकिन स्टूडेंट देन बी अ स्टूडेंट, शो दैट यू आर अ तालिबे इल्म, इल्म को तलब करने का, ठीक है। और तो क्या आपने सुबह करना है, शावर भी लेना है, कंघी करनी है सही से सलीके के साथ, जैसे तैयार होते हैं आप कहीं बाहर जा रही होती हैं, तैयार होती ना आप क्लास के लिए, लेकिन क्यों ऐसे होता है कि अभी कौन सा मुझे देखना है, किसी ने नहीं भी देखना, आप इल्म के तलब के लिए बैठ रहे हैं, कितने एक मुबारक रास्ते पर आप जाने लगे, कितना अल्लाह का कलाम है जिसके साथ आपका ताल्लुक होने लगा, जो आपके दिल में आने लगा, कोई छोटी बात नहीं है। तो कहीं करें, नाश्ता करें, फ्रेश हो, आपने जो अपने घर के काम है वो समेट लिए हो, कोई ऐसा काम ना हो जो आपके सर पे हो, नहीं भी समेटे हुए तो प्लीज़ केयर फ्री होके आए, कहीं भाग के नहीं जा रहे, काम वहीं पड़े हुए आप वापस जाके भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह से आपने तैयारी करके इंशाल्लाह ताला आना है। तो अब हम नियत देख लेते हैं कि नियत, सबसे पहली नियत हमारी क्या होनी चाहिए, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा हमारी नियत होनी चाहिए। ये तमाम आमाल की चाबी है, इखलास नहीं, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए बस, ये भी तो याद रखिएगा। इल्म सीखना क्या है, क्या इल्म सीखना, इज इट जस्ट अ क्लास या इबादत, या आपका चेंज हो जाना चाहिए माइंड ना। इल्म सीखने के लिए जब आप आएंगे तो किसके लिए बैठे हुए, ये इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को सीखने वाला इबादत का अमल कर रहा है, अल्लाह को खुश करने वाला अमल कर रहा है, उसको राजी करने वाला अमल कर रहा है। ये सोच के बैठिएगा कि अल्लाह ताला मेरे इस सीखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, मैं अपने रब को खुश कर रही हूँ। फिर दूसरी बात क्या, सबसे पहले नियत में सेकंड नंबर पे लिखिए, अपनी ज़ात से जहालत को दूर करना, मेरी जो जहालतें वो दूर हो जाए, ढूंढ रहे कि अभी मैं इसलिए आ रही हूँ क्लास में, बहुत से लोग लिखते हैं, ताकि मैं अपने बच्चों को उनके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो इसका मतलब है आपने अपने लिए तो जाहिल रहने का प्रोग्राम बना ही लिया, बस बच्चों तक ताकि इल्म ट्रांसफर हो जाए। ये पहले अपनी इसलाह, मैं अपनी ज़ात की इसलाह करूँ, मेरी तो जहालत दूर हो, बच्चों को तो बाद में ही जाहिर है मैं बताऊँ, मैं जाहिल रहूँ क्या? सबसे पहली एम ये होना चाहिए मेरी जहालत दूर। नंबर 3 फिर दूसरों की जहालत को दूर करना, आप चाहे वो घर वाले हैं, चाहे वो इर्द गिर्द वाले हैं, उन वो भी कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई उनकी जहालत है, उनकी भी जहालत को दूर करना, उनकी भी इबादत के तरीके हैं या और तरीके हैं उनको सही करना। इसके लिए फिर आप इंशाल्लाह ताला जो क्लास में सुनेंगे कोशिश किया करें कि उसको शेयर करें, किसी लेक्चर के तौर पे नहीं, वरना घर वाले बहुत जल्दी तंग आ जाएंगे, ठीक है, बल्कि एक अच्छे तरीके से बातों बातों में उन बातों को पूरे वीक में किसी ना किसी तरीके से आप अपने घर वालों तक ट्रांसफ़र कर दें। फिर ये नियत करें कि हमने दीन की हिफाजत करनी है, ये इल्म लेके मैं दीन की हिफाजत करूँ, ठीक है, मेरे दीन की हिफाजत होती है इससे। फिर नंबर 5 ये कि दीन के दिफा की नियत अभी से करें, कि मेरे दीन के ऊपर जो हमले होते हैं, जो बातें होती हैं, आप कोई उठ के कह रहा है कि ये दीन तलवार के जोर पे फैला, कोई कह रहा है ये दीन दहशत गर्दी सिखाता है, कोई कह रहा है ये दीन पता नहीं क्या है, कोई एक्सट्रीमिज्म है, मैंने इन सारी बातों का जवाब दिया, मैंने इसको डिफेंड करना, इसके डिफेंड के लिए मैं मुजाहिद, ठीक है, ये इल्म मैं इसलिए ले रही हूँ। एक जिहाद तलवार से होता है, उससे भी बड़ा जिहाद ये है कि इल्म से जिहाद किया जाए, इल्म का जिहाद अफजल है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मुशक्कत चाहिए होती है। इब्ने कय्यिम ने अपनी किताब में लिखा, क्योंकि इल्मी जंग से कई इस्लाम के दुश्मन मुसलमान हो जाते हैं, तलवार से जब जिहाद करते हैं तो फिर तो उनका उनको खात्मा ही करते हैं ना, लेकिन इससे उनको मुसलमान कर देते हैं, इसमें कोई खून खराबा नहीं होता, इसमें इंसान अपनी बात के जरिए से अपने दीन का भी दिफा करता है और दूसरों को अपने दीन में दाखिल कर देता है। तलवार को उनसे जिहाद करने से कम ही कोई लोग मुसलमान होते हैं। तो और अगली बात ये कि एक होती है इंफॉर्मेशन लेना और दूसरा है इल्म लेना, मालूमात लेने में और इल्म लेने में फ़र्क होता है। मालूमात इल्म नहीं है, मैंने ये रट लिया वो रट लिया, बाज़ लोगों को रट्टा लगाना बहुत अच्छा आता है, वो रटते ही रहते हैं, उनको ये आयत यहाँ पे है, वो आयत वहाँ है, ये बहुत अच्छी बात है आप याद रखें, लेकिन सिर्फ रटने की हद तक नहीं, ये इल्म फायदा मंद तब है जब हमारे अमल में है, असल इल्म है ही वो। इसीलिए इमाम मालिक फरमाते हैं कि इल्म बहुत सारी रिवायतों के जानने का नाम नहीं है, कि मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है, मैं ये भी रिवायत कर सकती हूँ, वो भी रिवायत कर सकती हूँ, मुझे इतनी हदीसें याद है, इतनी याद है, लेकिन इल्म खशियत का नाम है, समझ आई बात? यानी इल्म का पता तब चलेगा कि कितना आपके अंदर अल्लाह का डर आया। खशियत और डर में थोड़ा फर्क है, अब डर उर्दू में मैं क्या करूँ, ये कोई लफ्ज आता नहीं है, लेकिन खशियत मतलब ऐसा डर होता है कि जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसकी नाराजगी का डर, नाराज ना हो जाए, ये बढ़ना चाहिए। ये अगर आपके अंदर आया है तो इल्म आ रहा है, और अगर आप सिर्फ रट्टू टोते हैं, हिफ्ज कर लिया मैंने, ये कर लिया मैंने, फलाना कर लिया, और मुझे कोई सवाल पूछो मैं क्विज में नंबर 1 हूँ, और अगर मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आया, ओहो फिर इल्म हासिल करने का तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, अगर आपके अंदर खशियत बढ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म आया, और अगर खशियत नहीं आई, आप समझ आ रही ना खशियत क्या, अगर खशियत नहीं आई तो कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे याददाश्तों का इम्तिहान नहीं हो रहा, बल्कि आप खशियत अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके अंदर पैदा हो, इसको एम करें, इंशाल्लाह ताला जब आप इखलास के साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी होगी, आपका काम आप देखेंगे कि आप थकेंगे भी नहीं और इसका अजर भी पाएंगे। ऐसे तो हर काम में इखलास ज़रूरी है, लेकिन ये काम दीन का ऐसा है कि इसमें तो ख़ास तौर पे इखलास नहीं है अगर ना, तो कबूल ही नहीं। अगर दिल में ये ख्याल आ रहा है वाह वाह मेरी तो बड़ी अच्छी शाबाश मुझे मिल रही है और लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं और ऐसे ही रहे और ऐसे, तो समझ लें कि कुछ कुछ नहीं पाया आपने। तो और अपने आप में थोड़ी सी कनाट पैदा करनी होगी आपको। कनाट यानी आप कपड़े हैं या खाना पीना है या घर की कोई और चीज़ें हैं, कनाट है? समझ आ रही है कनाट ही क्या, कि इतना ही इतने पे ही काफ़ी हो जाए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब चीज़ों के पीछे भागेंगे ना, तो आप देखेंगे ज़ाहिर है उसके लिए वक्त चाहिए होगा, उसके लिए आपको भाग दौड़ चाहिए होगी, उसके लिए सब चीज़ चाहिए होगी, तो आपका वक्त अगर दूसरी चीज़ों में बहुत गुजरेगा ना, तो यहाँ से फिर आपका हरज होगा। तो कनात कोई बात नहीं है, अगर अगर आज मैंने कपड़े बगैर इस्त्री किए पहन लिए तो कोई मसला नहीं है, क्या क़यामत आ गई, कुछ मसला नहीं, साफ़ सुथरे होने चाहिए बस। कोई बात नहीं अगर आज एक डिश पकाइए, कोई मसला नहीं, अगर आज स्वीट डिश नहीं भी बनी तो कोई मसला नहीं, कनात। अगर आज कल का खाना आपने जो बचा हुआ था वो ही खा लिया, कनात अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज आपने जल्दी जल्दी करके दाल ही बना ली है तो कनात। अगर आज आप बहुत ज़्यादा अपनी डीप क्लीनिंग नहीं घर की कर सके, कनात। काफ़ी जितना काफ़ी हो जाए बस उतना ही उसके ऊपर रहें। टू मच जब आप करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे कमी आने लगेगी। और याद रखिए इल्म के लिए तो आपको कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब इमाम बुखारी ने एसी में बैठ के तो तालीम नहीं ली थी, बुखारी नहीं लिखी थी। मस्जिद नबी की जो छत थी ना, वो सुभान अल्लाह बारिश उसमें से टपक रही होती थी और आप बैठे होते थे, कीचड़ के आसार आपके पेशानी पे होते थे। और गर्मी में ये हाल होता था कि देखिए सहाबा कराम के दौर में भी वो भी कंकरियां पकड़ पकड़ के हाथ में पकड़ लेते थे और जब सजदा करते थे, तो यानी कितनी बहुत बहुत मुजाहिदे किए हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। साहबे सुफा का आप जिक्र सुनते हैं, या एक एक चादर उन्होंने बांधी होती थी, अपने घरों को छोड़ के आए हैं सिर्फ इल्म लेने के लिए। अब वो ना कमा सकते हैं ना कुछ है, क्योंकि सारा दिन उनका इल्म लेने में गुजरता था। अबू हुरैरा बहुत बाद में मुसलमान हुए थे आपको पता है, लेकिन कितनी सारी अहादीस उनसे यहाँ रिवायत हुई थी। तो लोगों ने पूछा इतनी आपने अहादीस रिवायत करी, आप इतनी बाद में मुसलमान हुए, मदनी दौर के भी बहुत बाद में। तो फरमाने लगे जब लोग काम धंधे और अपने काम कारोबार और अपनी कमाइयों के लिए जाते थे, उनमें मशगूल होते थे, तो मैं इल्म लेने के लिए बैठा होता था, समझे ना। तो कुछ उन्होंने कुर्बानी दी, तो आज अबू हुरैरा का नाम देखे कितना जिंदा है, सबसे ज्यादा अहादीस उनसे रिवायत हुई। तो इसके लिए कोई जतन करने पड़ते हैं, कोई मेहनत करनी पड़ती है, कोई कोशिश करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं इल्म आ जाता। ठीक है, तो याहिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस्म की राहत के साथ इल्म हासिल नहीं किया जाता। एक आदमी अगर चाहता है ना कि इल्म भी मिल जाए और बस मुझे जिस्म की राहत भी हो, बस एसी भी चल रहे हो और मेरी नींद भी पूरी पूरी हुई हो, 10 घंटे मैं सोया भी हूँ और फिर उसके बाद मेरे हर चीज़ ठीक हो और कोई मसले मसाइल ना हो, और तब मैं बैठूँ और फिर मैं इल्म लूँ, हर तरह का मुझे आराम मिल रहा हो, मेरी कुर्सी भी कंफर्टेबल हो और रात का यानी ज़्यादा लेट भी ना हुआ हो टाइम, तो फिर मैं इल्म लूँ, तो इस तरह से नहीं होता। आपको हो सकता है नींद भी कुर्बान करनी पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपने रिवायत भी सुनी होगी अबू हुरैरा जो भूख की वजह से इतने बेहाल हो गए थे, लोग समझ रहे थे उनको मिर्गी का दौरा पड़ा, तो लोग गर्दन पे पैर रख रख के जाते थे, लेकिन क्या मसला क्या था उनका उस वक्त, भूख इतनी शदीद थी कि भूख की वजह से बेहाल थे। तो सहाबा ने ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस इल्म को लेने के लिए। इसी तरह मुहद्दिसीन ने कितने कितने लंबे सफ़र किए और फिर जाके कहीं इल्म मिलता था। तो इसलिए ये जहन में लेकर आइएगा, मुझे कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, और इन सब जो मेरे घर के काम है इनके साथ करनी है, और कोई बात सुननी पड़े तो सब्र भी करना है, कनात भी मेरे अंदर। और ये याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी का इल्म हो सकता है? हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल रब्बी ज़िदनी इल्म, कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाह ताला ने उनको ये दुआ सिखाई है कि आप ए नबी ये दुआ करें कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आपको भी इल्म में इसका मतलब इजाफे की ज़रूरत थी। मैं और आप किधर ये सोच सकते हैं कि हमने काफ़ी ले लिया और हमें सारा आ गया और हमें अब सब पता है। हमारे लिए भी यही दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और जिस वक़्त मूसा अलैहि सलाम को नबुवत मिली तो सबसे पहले उनकी दुआ क्या थी? सबसे पहले नबुवत मिलते ही उन्होंने क्या फरमाया था? रब्बी शरह ली सदरी, ना मेरे सीने को खोल दे, क्या इस ये सीने का खुलना कि इसके अंदर इल्म आ जाए। हम भी ये दुआ करें। यसिर ली अमरी, अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे। वाहलुल उकदतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान की गिरह को खोल दे कि मेरी जुबान में इतनी यानी आराम से बात ऐसे हो जाए कि यफकहू कौली, लोगों को मेरी बात समझ आने लगे। कभी कभी इंसान की जुबान लड़खड़ाने लगती है बात कोई इल्म की बोलने लगे तो इन दुआओं को, जो इल्म के हसूल की दुआएं हैं ना, इनको याद कर लीजिए। इनको जब आप क्लास में बैठें तो सबसे पहले खुद इन दुआओं को मांगें। जब मांगी जाएं क्लास में शुरू होते वक्त तो आमीन कहें, और तहे दिल से मांगें, दिल के साथ, शौक के साथ। जैसे आप अपनी किसी और चीज़ जो आपकी ज़रूरत होती है उसके लिए आप जैसे दुआ मांगती हैं, इस तरह से शौक के साथ इन दुआओं को मांगिएगा, ताकि आपको वाकई ऐसे बेपरवाही से जहन इधर उधर भटक रहा है, और ऐसे दुआएं मांगने से दुआ कबूल नहीं होती। तो जैसे स्टार्ट किया रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐसे करके सर, इससे नहीं दुआ कबूल होगी। इसलिए बड़े शौक के साथ मांगे। जैसे किसी के पास औलाद नहीं हो, वो कैसे औलाद मांगता है, कैसे दुआ करता है उसके लिए? आपके पास इल्म नहीं है, आपको कैसे दुआ करनी चाहिए? इसी तरह, इसी तड़प के साथ, इसी शौक के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको इस इल्म की थोड़ी बहुत, तो अभी पूरी बातें भी नहीं हो सकी, थोड़ी बहुत जो मैंने अहमियत बताई है, तो अब तो आपका शौक और बढ़ जाना चाहिए इस इल्म को लेने का, इसको हासिल करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे मस्जिद में, तो सफवान बिन असाल फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख चादर लेकर टेक लगाए हुए थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इल्म हासिल करने के लिए हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबे इल्म को मुबारक हो। तालिबे इल्म को फरिश्ते अपने परों से ढांक लेते हैं, और तालिबे इल्म से मोहब्बत की बिना पर ऊपर तले कतार बनाते हुए आसमान तक पहुंच जाते हैं। इस मोहब्बत में कि ये इल्म का लेने वाला इतनी ऊपर तक, आसमानों तक पहुंच जाते हैं कतार दर कतार, और अपने परों से इसको ढांप लेते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब भी कोई इल्म हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था तो आप उसको क्या फरमाते हैं? मुबारक हो, और उसको मरहबा कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए मैं आप सबको भी, जो भी पहले के हैं या नए स्टूडेंट्स जो भी आए हैं इल्म की मजलिस में, इल्म के शौक में, इल्म को तलब करने के लिए उन्होंने इरादा किया है, उन सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म को सीखने में आपको साबित कदमी अता फरमाए। जिन्होंने एक बार हासिल कर लिया है वो भी अल्लाह ताला और इसमें इजाफा करने वाले बन गए, उनके भी अमल में इजाफा हो जाए, उनकी कोशिशों में इजाफा हो जाए। रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफा फरमा दे। अपने इल्म की पुख्तगी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह हमें इल्म में पुख्तगी अता फरमा दे। पुख्तगी तब होगी जब हम इंशाल्लाह इसको दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो अल्लाह इसको दोहराने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें इस इल्म को सीखने वाला भी बना, इस पर अमल करने वाला भी बना, और इसको आगे पहुंचाने वाला भी बना। ऐ अल्लाह हमसे इस इल्म का हक अदा करवा लेना, ऐ अल्लाह हमसे इस इल्म का हक अदा करवा लेना, अपने कलाम का हक अदा करने वाले बना लेना। ऐ अल्लाह हमें इस इल्म के ज़रिए बुलंदी अता फरमाना, उरूज अता फरमाना, दुनिया और आखरत में उरूज अता फरमाना, और इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना देना कयामत के दिन या रब्बुल आलमीन, हमारे हक में सिफारशी बना देना या रब्बुल आलमीन, हमारी ज़िंदगियों को रोशन करने वाला बना देना या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह इस कुरान का नूर घर घर में फैल जाए, अल्लाह हमें इसका जरिया बना देना है, हमारे रब हमें इसका जरिया बना देना, हमारा हिस्सा इसमें डलवा देना कि अल्लाह इस कुरान का नूर हमारे जरिए से घर घर में पहुंच जाए, घर घर रोशन हो जाए, तेरा दीन सर बुलंद हो जाए। अल्लाह हमें अपने दीन की सर बुलंदी दिखाना, अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगियों में इस दीन की सर बुलंदी दिखाना, या अल्लाह हमारी औलादों में इस कुरान को जिंदा कर देना, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी और हमारी औलादों में हमारे घरों में इस कुरान को जिंदा कर देना, अल्लाह हम कुरान को जिंदा करने वाले बन जाए, अल्लाह हम सारे तेरे दीन पे चलने वाले बन जाए, अल्लाह हमें रब्बानी बना देना, अल्लाह हमें रब्बानी बना देना, अल्लाह इस कलाम के ज़रिए हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर देना, अल्लाह भर देना, कूट कूट के भर देना। या अल्लाह जुमे का मुबारक दिन है और इसमें ऐसी घड़ी है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत कूट कूट के भर देना, अल्लाह अपना खौफ कूट कूट के भर देना, अल्लाह इस कलाम के जरिए हमें अमल करने वाला बना देना, अल्लाह जो हमारी बेअमल जिंदगी है इसको अमल वाला बना देना, अल्लाह हमारी बेअमल जिंदगी, नाफरमानी इस वाली जिंदगी, गुनाहों वाली जिंदगी से निकाल के हमें अपनी फरमा बरदारी वाली जिंदगी अता फरमा देना। अल्लाह इस इल्म के जरिए हमें भी सरबुलंदी अता फरमाना, और हमारे वालदैन का भी इकराम हो हमारे इस इल्म के जरिए, अल्लाह हमारी औलादों की भी सरबुलंदी हो इस इल्म के जरिए, या अल्लाह हमारे शोहरों तक भी इस इल्म को पहुंचा देना, या अल्लाह हमारे शोहरों को भी हमारे लिए मुआविन बना देना इस इल्म के रास्ते में, रब्बुल आलमीन हमारे घर वालों को मुआविन बना देना, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ कर देना इस रास्ते में, इस रास्ते की मुश्किलात और रुकावटें अल्लाह तू अपनी रहमत से दूर फरमा देना, हमारे दिलों की तंगियों को दूर फरमा देना। ऐ रब्बुल आलमीन हमें कोई चीज़ भी मुश्किल लगती है अल्लाह तू खुद आसान फरमा देना, अल्लाह तू खुद आसान फरमा देना, अल्लाह तू चाहे तो किसी चीज़ को भी आसान कर सकता है, तेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। ऐ हमारे रब तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देना, अल्लाह इस कोर्स को मुकम्मल करना हमारे लिए आसान कर देना, अल्लाह हमसे मुकम्मल करवा लेना, अल्लाह हमें इतनी हिम्मत ताकत अता फरमाना कि अल्लाह ये कोर्स हमारा मुकम्मल हो जाए, और जिस नीयत से हम कर रहे हैं तुझे राज़ी करने की, अल्लाह हम तुझे राज़ी कर पाएँ, अल्लाह इसके करने से इस कुरान के सफ़र में अल्लाह हमारे अमल को भी इसके मुताबिक ढालते चले जाना, या अल्लाह ताला हमारा अमल इसके मुताबिक ढाल देना, अल्लाह हमें भी चलता फिरता कुरान कर देना, अल्लाह हमें चलता फिरता कुरान कर देना, अल्लाह हमें उन लोगों में से बना देना जिनको लोग देखें तो उनको तू याद आ जाए, अल्लाह हमें ऐसा बना देना, अल्लाह हमें ऐसा बना देना, अल्लाह हमारी पहचान अपने कलाम के ज़रिए से होने वाला कर देना, अल्लाह तेरे कलाम के ज़रिए हमारी पहचान हो, और अल्लाह हमें इस कुरान की इज़्ज़त बढ़ाने वाला बना देना कि हम इस कुरान की इज़्ज़त में इजाफे करने वाले बने, ये ना हो कि कोई ये कहे कि कुरान वाले ऐसे बेअमल होते हैं या ऐसे बुरे होते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला हमारे किसी अमल से भी, हमारे किसी अमल से भी तेरे दीन के ऊपर, तेरे कलाम के ऊपर कोई हर्फ ना आए, या अल्लाह हमें ऐसा बाअमल बना देना कि हम इसकी इज़्ज़त पे इजाफा करने वाले बन जाएं, लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं, लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह हमारी ज़ुबानों में इतनी तासीर पैदा फरमा देना, अल्लाह हमारी ज़ुबानों में इतनी तासीर पैदा फरमा देना कि और लोग तेरे कलाम की तरफ आ जाएं, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी का मकसद ये बना देना कि हम जिए तो तेरे कलाम को ज़िंदा रखने के लिए, इसको आगे पहुंचाने के लिए, इसको दूसरों की ज़िंदगियों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों के घरों तक पहुंचाने के लिए, इसको आम करने के लिए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी से ये काम ले ले हमसे, अल्लाह हमसे ये काम ले ले, अल्लाह हमसे ये काम ले ले, अपने दीन की खिदमत का काम ले ले, हमें इस काबिल बना दे अल्लाह जिससे तू चुन ले, अल्लाह वही ये काम कर सकता है, या अल्लाह ताला तू हमें चुन ले, हम सबको चुन ले अल्लाह अपने इस रास्ते में, अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से ये काम ले लेना, या अल्लाह ताला हमारी अमल से, हमारी जुबानों से अल्लाह ताला ये तेरा कलाम आगे से आगे फैलता है। या अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी बाअमल बना देना, बाअमल बना देना, उनसे भी अपने दीन की खिदमत लेना अल्लाह, उनको भी कुरान सीखने सिखाने वाला बना देना। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।